तो जिया आरवी की तरफ देख संयम को देखने लगी और सोच में पड़ गई। तो क्या बोलूं? संयम जिया के पास आया। आंटी नहीं तो दीदी बोल दो, दी चलेगा ना? आरवी की ओर देखते हुए। आरवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी मैं लगती हूँ तो दीदी बुला लो। संयम बोला, तो डन, जिया आप इनको दीदी बुलाओ। जिया खुश होते हुए बोली, ओके चाचू, डॉक्टर दीदी, थैंक यू। आरवी उसकी प्यार से गाल खींचते हुए बोली, मोस्ट वेलकम क्यूटी पाए। तभी संयम ने जिया को गोद में उठाया। आरवी ने जिया को हाथ हिलाते हुए बाय कहा। जिया ने भी जवाब में हाथ हिलाया और बोली, आप भी भागो, डेविल आ जाएगा। आरवी माथा खुजलाते हुए खुद से मन ही मन बोली, मैं जितना भाग लूं बच्चा, मुझे तो डेविल के पास ही जाना पड़ता है, उन्हीं के घर में तो रहती हूँ। ये कह जिया से बोली, आप भागो, मैं भी भागती हूँ, गो जल्दी जाओ, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। संयम ने कैटेकर को चलने को कहा और जिया को लेकर आरवी से बाय बोल वहां से चला गया। आरवी उनके जाते ही वार्डरूम से बाहर आई तो डॉक्टर से टकरा गई। डॉक्टर आरवी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वेल डन, आपकी जुंती बेस्ट डॉक्टर में होने वाली है, कैसे पेशेंट को हैंडल किया जाता है बखूबी आता है आपको। बीमार है तो क्या हुआ, प्यार तो सबको अच्छा लगता है ना डॉक्टर, आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा। यार राइट, एंड थैंक यू सो मच आपकी वजह से, डॉक्टर बोल रही थी कि तभी आरवी बोल पड़ी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, मैंने वही किया जो करना चाहिए था, और हाँ थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपकी हेल्प की वजह से मैं अच्छे से ड्रेसिंग करना सीख गई जो मुझे पहले नहीं आती थी, सो थैंक यू सो मच। ये सुन डॉक्टर मुस्कुरा दी और आरवी के कंधे पर हाथ रख वहां से चली गई। आरवी खुश होते हुए खुद से बोली, डॉक्टर कपिल अंकल, आपकी सीख आज हमने काम ले ही ली, वो भी एक प्यारी सी बच्ची पर, हम बहुत खुश हैं और ये खुशी हम अभी आपके साथ बांटेंगे, फोन करते हैं आपको। आरवी ने डॉक्टर कपिल को फोन लगाया पर फोन नहीं लगा। ये देख आरवी मायूस होते हुए खुद से बोली, पता नहीं कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं ये, जब देखो बिजी, कभी भी चाहो तब बात नहीं हो पाती, लगे होंगे समाज कल्याण में, और फिर तो अंकल खुद को खुद दिखाई नहीं देते। मुस्कुराते हुए, खैर मैसेज छोड़ देती हूँ, जब देखेंगे खुद कर लेंगे कॉल, कह आरवी ने अपनी खुशी उनसे शेयर की और फ्री होते ही कॉल करने का मैसेज भी भेज दिया। अपना फोन अपने व्हाइट कोट में रखते हुए बोली, वैसे मिस्टर मेहरा का वीडियो ऐसे काम आएगा सोचा नहीं था, ये वीडियो अपने पास रखना पड़ेगा, क्या पता कब किस बच्चे को हंसाने के काम आ जाए मिस्टर अक्करचंद का हंसना। हंसते हुए उसी शाम दिनकर जी हॉल में इधर उधर चल रहे थे। आरवी ऊपर से आई तो अभी जो सीढ़ियों के पास खड़े दिनकर जी को देख रहा था उससे धीरे से बोली, क्या चल रहा है? अभी कंधे उचकाते हुए बोला, तुम्हारे दादा ससुर परेड कर रहे हैं, क्यों पता नहीं? वैसे सच में आरवी, तेरे ससुराल वाले बड़े अजीब हैं, चाहे वो दादा ससुर हो तुम्हारे या हस्बैंड तुम्हारा, इनका कुछ समझ ही नहीं आता, कभी खुद परेड करते हैं कभी दूसरों की करवा देते हैं। ये सुन आरवी ने एक मुक्का उसकी कमर में चढ़ दिया, हो गया तेरा। तभी राधे ने दिनकर जी से कहा, मालिक आप इंतजार बैठकर भी तो कर सकते हैं, कब से इधर से उधर, पांव में सूजन आ जाएगी, अयांच बाबा आ जाएंगे ना। दिनकर जी दरवाजे की ओर देखते हुए बोले, तुम जाकर अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। तभी आरवी आगे चली आई और राधे को जाने का इशारा किया, वो हाँ में सिर हिलाकर किचन की तरफ चला गया। तभी आरवी दिनकर जी के साथ कदम से कदम मिलाते इधर से उधर चलने लगी। उसे यूं करते देख दिनकर जी रुक गए, क्या कर रही हैं आप? आरवी मुस्कुराते हुए कमर से अपने हाथ टिकाते हुए बोली, सेम क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यूं ही। दिनकर जी बोल रहे थे कि आरवी उनकी बाहें पकड़ते हुए बोली, जब आपको अपने दोनों पोतों पर भरोसा है और उनकी मेहनत रंग लाएगी, का आपने आशीर्वाद भी दिया है उनको, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? आ जाएंगे वो और आपको अपनी जीत की भी खबर सुनाएंगे, पर इसके लिए खुद को थकाने की क्या जरूरत है, हम बिना टेंशन लिए आराम से सोफे पर पसर कर भी तो वेट कर सकते हैं ना, जो जीत की खुशी मिलने वाली है उसकी वहां बैठकर भी तो राह देखी जा सकती है, सोफे की तरफ इशारा करते हुए। ये सुन दिनकर जी मुस्कुरा दिए और हां में सिर हिलाते आरवी के साथ सोफे पर आकर बैठ गए। तभी अभी उनकी तरफ चला आया और आरवी से बोला, तुम कोई जादू टोना जानती हो क्या, जो हर कोई तुम्हारी बात मान लेता है, चाहे फिर छोटे हो या बड़े, पहले वो बच्ची और अब दादाजी। आरवी हंसते हुए बोली, सही पहचाना, सच में जादू टोना जानती हूँ, लाइक काला जादू, और तुमको पता है सबसे पहले मैंने तुम पर ट्राई किया था, तुम फंस गए तो फिर मैं सबको फंसाने लगी, जैसे तुम मान लेते हो मेरी बात वैसे सब मान लेते हैं। ये सुन दिनकर जी हंस दिए तो आरवी बोली,
ये पागल कुछ भी बोलता है, बात कहने और मनवाने के कुछ तरीके होते हैं, समझा? अभी गर्दन झटकाते हुए बोला, झूठी बड़ियाई काला जादू करने वाली, बात तुम्हारी सही लगती है तभी मानते हैं। दिनकर जी बोले, बात सही कहती भी तो है, काला जादू ना सही पर बातों से जादू करना खूब आता है आरवी को, और इस बात में कोई दो राय नहीं, आरवी के सिर पर हाथ रखते हुए। ये सुन आरवी अभी दोनों हंस दिए। तभी अयांश आ गया, उसके साथ विनीत वर्तिका भी आए थे। उनको आते देख दिनकर जी आरवी सोफे से उठकर और तीनों उनकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे देख साफ पता चल रहा था कि खुशी की खबर ही लेकर लौटे हैं। विनीत भागकर दिनकर जी के पास आया और गले लगते बोला, दादू हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, मिस्टर रायचंद के साथ हमारी डील हो गई दादू। दिनकर जी ने खुशी से विनीत की पीठ थपथपाई, शाबाश। फिर वर्तिका भी आकर उनके सीने से लगी तो उसके सिर पर हाथ रखते बोले, मुझे मेरे बच्चों पर बहुत गर्व है, पता था आप सब ये डील कर ही लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। विनीत वर्तिका दोनों ने मुस्कुराते हुए थैंक्स दादू कहा। अयांश जहां आकर रुका था वहीं खड़ा था। दिनकर जी उसके पास आए और प्यार से गाल छूकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आरवी उनको देख मन ही मन खुद से बोली, मिस्टर मेहरा अपनी खुशी सेलिब्रेट करने में इतना हिचकिचाते और शर्माते भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेविल, दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए। तभी वर्तिका हाय कह आरवी के गले मिली, आरवी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। फिर वर्तिका उसे थैंक यू कह अभी की तरफ देखती हुई उसके पास चली आई तो अभी उसके गले लगते हुए बोला, वर्तिका कॉन्ग्रेचुलेशंस। वर्तिका थैंक यू अभिनव कह उससे अलग हुई। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि विनीत उनकी तरफ आते हुए बोला, जीजाश्री बधाई के पात्र तो हम भी हैं। ये सुन सब हंस दिए। वर्तिका ने उसके चपत लगाई और अभी ने विनीत के गले लगते कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। दिनकर जी अयांश से अलग हुए और राधे को आवाज देते हुए बोले, राधे डिनर में हलवा बनाओ, खुशी के मौके पर मीठा तो बनता है, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत। अयांश के गाल थपथपाते हुए, आप खुश है ना बेटा? अयांश ने हां में सिर हिला दिया। तभी वर्तिका बोली, अयांश क्यों खुश नहीं होगा दादू, ये डील होना किसी सक्सेस से कम थोड़ी है। विनीत हंसते हुए बोला, और क्या, वो कहते हैं ना सामने लड्डू का थाल पड़ा है और सब सोच रहे हैं किसे सबसे बड़ा और किसे ज्यादा लड्डू मिलेंगे। हमारे अयांश ने मिस्टर रायचंद के सामने कम लफ्जों में ऐसी बात कही कि वो फट से इम्प्रेस हो गए और लड्डू भरा पूरा थाल अयांश के हाथों में थमा दिया, मतलब डील। बोले, मिस्टर अयांश मेहरा तुम ही ये डिजर्व करते हो, और किसी को तो मौका भी नहीं मिला। सब सोच रहे होंगे कि मिस्टर रायचंद हमसे सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, पर मीटिंग के साथ साथ डील होना, ये बात मीडिया ने फटाफट फैला दी कि सब जान गए हमें कुछ नहीं मिलने वाला, अयांश मेहरा बाजी मार गया। ये सुन सब मुस्कुराते अयांश की तरफ देखने लगे तो अयांश विनीत की बात पर नामे से फिलाते वहां से जाने लगा। तभी आरवी बोल पड़ी, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये सुन अयांश जाते जाते रुक गया। उसने आरवी की तरफ देखा तो वो विनीत की तरफ हाथ बढ़ाए हुए थी और फिर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस विनीत जी, थैंक यू सो मच आरवी। विनीत अयांश की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोला। तभी अयांश आरवी की तरफ देखते वहां से चला गया तो अभी बोला, पार्टी तो होगी ना, विनीत वर्तिका की तरफ देखते हुए। ये सुन विनीत बोला, चाहिए क्या पार्टी? आरवी हंसते हुए बोली, तभी तो कह रहा हूँ विनीत जी, इतनी बड़ी डील हुई है पर यहाँ तो पार्टी होने से रही। वर्तिका आरवी से बोली, यहाँ नहीं हो सकती तो क्या हुआ, उस घर या कहीं बाहर कर लेंगे। तभी दिनकर जी बोल पड़े, पार्टी यहीं होगी। ये सुन सब इनकी तरफ देखने लगे तो दिनकर जी आकर सोफे पर बैठ गए। पार्टी ही होगी, अंशु कुछ नहीं कहेगा, हम बात करेंगे, आप सब सोचो पार्टी कब करनी है। ये सुन सब मुस्कुरा दिए। तभी विनीत बोला, कल संडे है तो लंच टाइम में करते हैं, लंच भी हो जाएगा और पार्टी भी, हम सब साथ साथ। दिनकर जी हां में सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है कल करते हैं जीत का जश्न। सबने खुश होते हुए हां में सिर हिलाया। तभी दिनकर जी के पास बैठते हुए विनीत बोला, दादू अगर अयांश आपसे ना माने पार्टी के लिए तो आप आरवी को आगे कर देना, जो करेले के पकवान खाने के लिए उसे राजी कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है, और अयांश आजकल आरवी की हर बात मानता है ना आरवी। ये सुनते ही आरवी ने सोफे से पिल्लो उठाया और विनीत पर दे मारा और सब हंस पड़े। तभी राधे सबके लिए चाय ले आया और सबको चाय देकर बोला, आप सब चाय पीजिए, हम अयांश बाबा को कॉफी देकर आते हैं। इतना कह राधे ऊपर चला गया, सब चाय की चुस्कियां भरने लगे। आरवी विनीत को घूर रही थी। तभी विनीत अपना एक कान पकड़ते हुए बोला, मजाक कर रहा था आरवी, आज खुशी का मौका है, बख्श दो। बख्श ही दिया है तभी बचे हुए हैं आप विनीत जी, वरना आप भी जानते हैं क्या होता। आरवी ने ये कहा तो विनीत मुंह बना लेता है और सब उसकी बेचारगी वाली शक्ल देखकर हंसने लगे। डिनर के बाद आरवी अपने रूम में आई और दाईं तरफ रखे टेबल की तरफ पढ़ते हुए बोली, अभी जो किताब मांग रहा है वो शायद इन्हीं किताबों में हो, कह आरवी टेबल पर रखी बुक्स देखने लगी। तभी आयांश रूम में आ गया और आकर बेड पर लेट गया। सिर के नीचे हाथ लगाए आरवी की तरफ देखते हुए बोला, हाय वाइफी। ये सुन आरवी फट से पीछे मुड़ी और आयांश को देख मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर मेहरा। आरवी से इतना स्वीटली रिस्पॉन्स पाकर एक पल तो आयांश हैरान हुआ, पर दूसरे ही पल बौहें उठाते हुए बोला, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हम हमेशा ही खुश रहते हैं मिस्टर मेहरा, बस कोई ग्रहण लगाने ना आए हमारी खुशी पर, आयांश की ओर देखते हुए। खैर, हम खुश अच्छे नहीं लगते क्या आपको, आयांश मुस्कुराते हुए एक टक आरवी को निहारते हुए बोला। तुम अच्छी कब नहीं लगती? ये सुन आरवी आयांश को घूरने लगी तो आयांश बेड पर बैठ बात बदलते हुए बोला, आज तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? मैं तुम्हारे रूम में आ गया और तुमने परमिशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा, वाई। तभी आरवी आयांश की तरफ चली आई और उसे थोड़ा पीछे होने का इशारा किया। आयांश उसे देखते हुए थोड़ा पीछे सरक गया। आरवी उसकी बगल में बैठ गई और आयांश की तरफ देखते हुए बोली, आपको जानना है हमने आज आपको मेरे रूम में आने पर रोका, मतलब टोका क्यों नहीं? आयांश ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी आरवी थोड़ा सा आयांश की तरफ मुड़ी और अपना चेहरा आयांश के चेहरे के पास ले आई। वो इसलिए?